Assalamu alaikum Abdullah. Adam dedi. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu emma ba'du fa'udhu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Ghayril mağdûbi aleyhim. Veleddallin. Ya eyyuhan nebiyy harricul mu'minin alel qital. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. گزشتہ خطبے میں میں نے ان آیات کے مضمون کا حوالہ دیا تھا جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آواز آ رہی ہے؟ لاؤڈ اسپیکر ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں؟ یہاں سے فیڈ بیک نہیں ہو رہا ہے. گزشتہ جمعے میں میں نے جن آیات کا حوالہ دیا تھا آیات پڑھے بغیر, ان سے متعلق اس دوران ایک سوال آیا ہے. کسی نے یہ توجہ دلائی کہ آپ نے تو کہا ہے کہ ابتدا میں خدا تعالیٰ نے نرمی فرماتے ہوئے نسبت کو ہلکا رکھ دیا اور مومن کو ایک مومن کے مقابل پر دو کفار کی نسبت قائم فرمائی, اور بعد ازاں اس نسبت کو بڑھا کر 1:10 کی نسبت بنا دیا. لیکن قرآن کریم میں تو پہلے 1:10 کی نسبت کا ذکر آتا ہے اور بعد میں 1:2 کی نسبت کا. چنانچہ ان آیات کی تلاوت میں نے اسی غرض سے کی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اگرچہ پہلے 1:10 کی نسبت ہی کا ذکر ہے, لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا ہے کہ یہ بات کی بات ہے. پہلے بیان کرنے میں ایک حکمت ہے, میں اس کی طرف متوجہ ابھی آپ کو توجہ دلاؤں گا. ترجمہ ان آیات کا یہ ہے, اب کچھ زیادہ ہی اونچا ہو گیا, ذرا ہلکا کر دیں. ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ اے نبی, مومنوں کو تحریص دلا قتال کی. اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے, اور اگر تم میں سے 100 ایسے ہوں تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے. کن لوگوں پر؟ وہ ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, اس لیے کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, نہ سمجھ لوگ ہیں. الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ, لیکن سر دست اللہ تعالیٰ تم سے رعایت کا سلوک فرماتا ہے. وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا, اور جانتا ہے کہ ابھی تمہیں کچھ کمزوری ہے. بس اب یہ دستور ہے کہ اِن یَکُن مِنْكُمْ 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200, اگر تم میں سے اگر 100 صبر کرنے والے ہوئے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے, اور اگر تم میں 1000 صبر کرنے والے ہوئے تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے, اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے. بس ان آیات کے ترجمے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ابتدا میں کمزوری کا ذکر فرمایا گیا ہے, لیکن جیسا کہ میں نے متوجہ کیا تھا اس سے مراد نعوذ باللہ ایمان یا صلاحیتوں کی کمزوری نہیں ہے, بلکہ پہلے 1:10 کی نسبت کا ذکر فرمانا یہ بات بتا رہا ہے کہ اس نسبت کا حقیقی اور سچا اطلاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے متبعین پر ہوتا ہے, और आप ही की बरकत से बाद में जब इस्लाम में मज़ीद ताकतें पैदा हो जाएंगी, रोब बढ़ जाएगा, इक्तिसादी कमज़ोरियाँ दूर हो जाएंगी, हथियारों की कमज़ोरियाँ दूर हो जाएंगी, तो वो जौहर जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना माअहु और उन लोगों में है जो आपके साथ हैं, वो पूरी तरह चमकेगा और एक को दस पर गलबा नसीब होने का दौर भी शुरू हो जाएगा। जहाँ तक दलील का ताल्लुक है, ये अजीब बात है कि कुरान करीम इस मौके पर यह दलील पेश करता है, बेअन्नहुम कौमुल ला यफ़क़हून, इसलिए कि ये लोग समझते नहीं हैं। हकीकत में अपने मकसद का पूरा इदराक, उसकी गहरी समझ और उस पर पूरा यकीन है जो गैर मामूली ताकत पैदा करता है। और जिस शख्स को अपने मकसद का कोई इदराक ना हो, समझ ना हो कि मैं क्यों ये काम कर रहा हूँ, वो ताकतवर होते हुए भी अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। बस एक बहुत ही अजीम शान नफ्सियाती हिकमत की तरफ मुतवज्जे फरमाया गया, फरमाया मोमिन और सब्र करने वाला मोमिन वो है जिसे अपने मकसद पर इतना कामिल यकीन है और इतनी गहराई से उसको समझता है कि तकलीफ़ उठाते हुए भी वो उस पर सब्र से कायम रहता है। और सब्र का मकसद के फहम से गहरा ताल्लुक़ है। जब इंसान पर तकलीफ़ वारिद होती है तो उस वक्त वो उसका मकसद दोबारा उसके सामने आता है, यानी ज़ाहरी तौर पर बाशऊर तौर पर उसके सामने उभरता है और दोबारा वो अपने मकसद को खंगालता है और उस वक्त वो देखता है कि हाँ ये मकसद इस लायक है भी कि नहीं कि मैं इसकी खातिर जान दूँ और इसकी खातिर अजीम कुर्बानियाँ पेश करूँ। ये एक ऐसी नफ्सियाती हकीकत है जिससे कोई जिसमें कोई इस्तिस्ना नहीं, मज़हबी हों या गैर मज़हबी कौमें हों, उनकी तारीख में हमेशा ऐसे सब्र आजमा वक्त आते हैं जिनमें मकसद पर यकीन सबसे नुमाया किरदार अदा करता है। और अगर उस मौके पर इंसान अपने जहन में या सिपाही अपने जहन में मकसद को खंगाल कर समझें कि ये तो बेमकसद लड़ाई है, बेफायदा लड़ाई है, तो वो अपने हथियार फेंक देते हैं, दिल छोड़ बैठते हैं। यही वजह है कि जंग अजीम सानी में खसूसियत से जर्मन कौम ने इस हरबे को अपने मुकाबल मद्द मुकाबल पर इस्तेमाल किया और प्रोपेगेंडा के ज़रिए, जिसे वो फिफ्थ कॉलम कहते थे, ये मकसद से ताल्लुक़ काटने की कोशिश की जाती थी और मकसद को अजनबी बनाने की कोशिश की जाती थी और मकसद को बातिल बेमानी बनाने की कोशिश की जाती थी। चुनांचे हिंदुस्तान में कसरत से यह प्रोपेगेंडा किया जाता था कि तुम किनकी खातिर लड़ रहे हो, वो लोग जिन्होंने तुम्हें अपना ग़ुलाम बना रखा है, किस कौम की खातिर, क्या अपनी ग़ुलामी को हमेशगी बख्शने के लिए तुम ये कुर्बानियाँ दे रहे हो। इस किस्म की बातें कहवा खानों में हर जगह हुआ करती थी और नतीजतन मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही ऊँचा कर दिया गया है, इसको ठीक कर लें, वरना बाहर जो दूर दूर ये टेलीविजन का खुतबा पहुँच रहा है वो क्या कहेंगे। तो देखें कुरान करीम ने कैसी उम्दा बात बयान फरमाई है। जहाँ तक अल्लाह ताला की मदद का ताल्लुक है वो मज़मून दूसरी जगह बयान फरमाया, लेकिन यहाँ एक ऐसा दावा किया है जो हिसाबी दावा है और उस हिसाबी दावे के लिए कोई कतई मंतकी दलील होनी चाहिए थी। और वो दलील ये बयान फरमाई कि तुम अपने आला मकसद को समझते हो, इसके नतीजे में तुम्हें सब्र अता होता है और ये लोग बेमकसद लड़ाई कर रहे हैं और जब मुश्किल के वक्त दौर में से गुजरते हैं तो उस वक्त अपने मकसद का खोखलापन इन पर ज़ाहिर होने लगता है और इनमें सब्र की ताकत नहीं रहती। चुनाचे आप इब्तदाई इस्लामी जंगों पर नज़र डाल कर देखें, हमेशा आपको ये दो बातें नुमाया तौर पर कारफरमा दिखाई देंगी, मुसलमानों को सब्र अता हुआ है और दुश्मनों को बेसब्री, और बहुत थोड़ी आजमाइश में से गुजर कर वो अपने मकसद से ताल्लुक तोड़ बैठते थे और इसीलिए बाद में तेज़ी के साथ मुसलमान होने लगते थे। بس یہ وہ مضمون ہے جس کو ہر داعی اللہ کو آج بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. جہاں تک تاریخ اسلام کے آغاز کے غزوات اور سریا وغیرہ کا تعلق ہے, میں نے جائزہ لیا تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی غزوات پیش آئے, ایسے جہاد جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی, اور اسی طرح بہت سے سریے بھی یعنی جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شرکت, آپ نے خود شرکت نہیں فرمائی لیکن وہ تھا جہاد ہی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے تابع غیروں سے مقابلہ ہوا, ان میں ایک اور تین سے نسبت نہیں بڑھی. اس لیے ظاہر ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم سے تخفیف کی جاتی ہے تو یہ سامان بھی فرما دیا کہ ایک اور دس کی نسبت کا سوال ہی نہ پیدا ہو. اگر اس وقت دشمن اس آیت کے نزول کے بعد اس راز کو سمجھ لینے کے بعد دس کی تعداد میں حملہ آور ہوتا ایک کے مقابل پر, تو ظاہر ہے کہ وہ ضمانت مسلمانوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی لیکن حفاظت کے اور طریقے اللہ تعالیٰ استعمال فرماتا ہے, اور ان طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ دشمن کو اس بات کی نہ عقل دی نہ توفیق دی کہ ایک مسلمان کے مقابل پر دس آ جائیں یا سو کے مقابل پر ہزار نکل کھڑے ہوں. اور ایک موقع صرف ایسا ہے جس میں جنگ موتا کے پر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک لشکر رومیوں کے علاقے کی طرف بھیجا گیا, مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی اور رومیوں کی تعداد 1,00,000 تھی. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانے کی یہ صورت پیدا فرمائی کہ حضرت خالد بن ولید کو یہ سمجھ دی کہ اس موقع پر دشمن سے ٹکرانا معقول بات نہیں ہے, دشمن کے نرغے سے بچ کر نکل آنا معقول بات ہے. چنانچہ بہت ہی حیرت انگیز صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس دشمن کے گھیرے سے نکل کر مسلمان فوج کو بچا لیا, اور یہ آپ کا بھاگنا نہیں تھا بلکہ الہی تقدیر کے تابع ایسا واقعہ ہوا. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اس وقت نسبت 1 اور 10 کی نہیں رہی تھی بلکہ 3,000 کے مقابل پر 1,00,000 تھے, تو بہت بڑی نسبت بڑھ چکی تھی. بس اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حساب پیش فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسی حساب کا اطلاق ہوا ہے, اور ایک دوست سے کچھ تھوڑا سا جب بڑا تو اس کے مقابل پر غیر معمولی فرشتوں امداد کی گئی جس کو فرشتوں کی امداد بیان فرمایا گیا, اور حسب موقع دشمن کی تعداد کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن کریم بتاتا ہے کہ فرشتے نازل کیے گئے. یہ فرشتے کیا تھے ان کے متعلق دوسری جگہ خدا تعالیٰ نے خود ظاہر فرما دیا ہے کہ فرشتوں کا مضمون تمہارے دل کی تسلی کے لیے ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ نصر یعنی مدد اللہ کی طرف سے آیا کرتی ہے. تم ان باتوں کی کنہوں کو نہیں سمجھ سکتے, ان کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتے, اس لیے تمثیلی طور پر تمہیں فرشتوں کی تعداد بتائی گئی ہے, مگر اصل مقصد مدد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیسے مدد کی جاتی ہے. چنانچہ وقتی طور پر روب بڑھا کر اور دشمن سے غلطیاں کروا کر خدا تعالیٰ اس طرح مدد فرماتا ہے. لیکن بالعموم جہاں تک مقابلے کے نتیجے کا تعلق ہے وہاں 1 اور 2 کی نسبت دکھائی دیتی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنے مقابلے ہوئے ہیں اس دور میں اگر کل کفار مقتول کا شمار کریں اور مسلمان شہداء کا شمار کریں تو بالعموم یہی نسبت دکھائی دیتی ہے. چنانچہ قاضی سلیمان احمد نے اپنی کتاب سیرت میں تمام اعداد و شمار اکٹھے کر کے یہ نقطہ پیش کیا, لیکن اس میں انہوں نے بہت سے बांट के आजाद शुमार भी इकट्ठे किए और कुछ जबरदस्ती भी की है। इसलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी इस किताब अपनी सीरत में उसका जिक्र करते हुए उनके हिसाब को रद्द किया है। लेकिन जहाँ तक मैंने जायजा लिया है, बिलमूम मुसलमानों को एक और दो या एक और दो से ज्यादा का गलबा आता हुआ है, यानी नतीजे के लिहाज से। बस मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो वादे अल्लाह ताला ने आगाज में हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन साथियों से किए थे और उनकी बरकत से ताबईन को जो गैर मामूली रोब और गैर मामूली गलबे अता हुए, इस दूसरे दौर में आखरीन के दौर में भी अल्लाह ताला दावत अल्लाह करने वालों से ऐसा ही सलूक फरमाएगा और हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा को जो गैर पर गलबा अता हुआ उसमें वक्त के गुजरने से कमी नहीं आएगी बल्कि इजाफा होता चला जाएगा। और अब इस दौर में मैं देख रहा हूँ कि उसके आसार नुमायाँ तौर पर नज़र आ रहे हैं और अल्लाह ताला अपने फजल के साथ जमात को जहाँ भी वो बेदार होकर दावत अल्लाह के काम में मसरूफ़ हुई है, एक और दस की नस्बत से बल्कि बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा नस्बत के साथ कामयाबियाँ अता फरमा रहा है। एक और मज़मून इससे ये पेश नज़र रहना चाहिए, इसमें यह पेश नज़र है और रखना चाहिए कि इससे मुराद महज ज़ाहरी क़िताल नहीं है, जैसा कि मैंने बयान किया हर किस्म का मुकाबला इसमें शामिल है और ये एक अमूमी दस्तूर भी बयान फरमाया गया है कि वो कौमें जो बामकसद हों, जो सब्र करने वाली हों, मुनज़्ज़म हों और अपने आप को एक आला मकसद के लिए क़ुरबान करने के लिए हमेशा तैयार रहें, अगर किसी मुल्क में उनकी तादाद 10% हो जाए तो वो ज़रूर गालिब आ जाती हैं। उसके बाद हिसाब यकसर बदल जाता है, पहले रफ्ता रफ्ता आहिस्तगी के साथ तरक्की होती है, लेकिन जब आप एक और दस की नस्बत हासिल कर लेते हैं तो सारा मुल्क आपके कदमों में आ जाता है। ये वो खुशखबरी है जिसको पेश नज़र रखते हुए हमें बाज़ मुल्कों में पहले से बहुत बढ़कर तेज़ी से काम करना चाहिए, क्योंकि हम उस मोड़ तक पहुंच रहे हैं जिसके बाद चढ़ाई ख़त्म है और फिर तेज़ी के साथ सारा मुल्क खुदा ताला के खुदा ताला की तरफ बुलाने वाले मुखलिसीन के की झोली में होगा। मैं ज़रा रुका इसलिए कि ज़ाहरी तौर पर कदमों में होगा का मुहावरा आ रहा था मगर मज़मून की मुनासबत से यहाँ सचता नहीं था, तो फसाहत और बलावत को एक तरफ रखना चाहिए, बाज़ मौके पर मज़मून को बहरहाल तरजीह देनी चाहिए। इस पहलू से उनकी झोली में होगा, इस तरह झोली में होगा जैसे एक मोहब्बत करने वाला चमन से मोहब्बत करने वाला फूल चुनकर अपनी झोली में डालता है और इस गरज से झोली में होगा कि इन फूलों को हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाला जाए। इस नीयत से इस मज़मून को समझकर आप दावत अल्लाह करें। अब मैं वापस उस मज़मून की तरफ लौटता हूँ। मैं बता रहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हदायत दी कि पहले परिंदों को मानूस करो, फिर वो तुम्हारे हो जाएंगे और तुम्हारी आवाज़ के नतीजे में लब्बैक कहेंगे, फिर वो गैरों में रहकर भी तुम्हारे रहेंगे। इसमें एक और बहुत बड़ी हिकमत की बात यह है कि वो मज़हबी कौमें जो रफ्ता रफ्ता आहिस्तगी से फैलती हैं उनको अक्सर सूरतों में मुआशरों में गलबा नसीब नहीं होता और उनके बनाए हुए मुसलमान या मोमिनीन अमूमन गैर मुआशरे में ज़िंदगी बसर करते हैं जहाँ गैर मुआशरे का गलबा होता है और ऐसी सूरत में उनके ज़ाया होने का बहुत बड़ा ख़तरा दरपेश होता है। बस अल्लाह ताला ने इस तरबियती मसले का हल भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिखला दिया, फरमाया अगर तुमने उनको अपनी ज़ात के साथ मानूस कर लिया तो फिर वो तुम्हारे रहेंगे مختلف سمتوں میں چلے جائیں گے، مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کے بیٹھیں گے، لیکن تمہاری ایک آواز کے نتیجے میں دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے. ان کو مستقل اپنا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کرو، اور اس محبت کے نتیجے میں ان کے دل کا تعلق اپنے دلوں کے ساتھ باندھ دو، ان کے دلوں کا تعلق اپنے دل کے ساتھ باندھ دو. دعوت اللہ کرنے والے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جس کو وہ خدا کی طرف بلائے اس کا خدا کی طرف آنا عارضی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ چند دن کے بعد وہ غیر معاشرے میں جائے اور پھر غیروں کا ہو رہے. بس جہاں تبلیغ میں خشکی ہوتی ہے وہاں عموماً ایسے آنے والے ضائع ہو جاتے ہیں. جہاں تبلیغ میں محبت اور تعلق کے جذبات غالب ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آنے والے ہمیشہ مستقل دین ہی کے ہو رہتے ہیں. اور عموماً ضائع ہونے والوں میں میں نے یہی محسوس کیا ہے کہ ان کے اور ان کو دعوت اللہ دینے والوں کے تعلق میں ایک خشکی تھی، کوئی روحانی نرمی اور گرمی نہیں تھی. بہرحال اب سوال یہ ہے کہ مانوس کیسے کیا جائے. مانوس کرنے کے متعلق میں ایک دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، تعلقات بنانے کے بہت سے طریق ہیں، اور سب سے واضح اور نمایاں طریق احسان کا طریق ہے. اور اگر احسان ایسا ہو کہ جس کے نتیجے میں جس پر احسان کیا جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ اپنی کسی غرض سے کر رہا ہے، تو تھوڑا احسان بھی بہت ہوتا ہے اور غیر معمولی اثر ڈالتا ہے. ایک آدمی کو ایک چائے کی پیالی پلانا کون سا بڑا احسان ہے؟ معمولی بات ہے. بعض وقت پلانے والا اس سے بہت زیادہ غریب ہوتا ہے جس کو پلائی جاتی ہے، لیکن اگر امیر آدمی کو ایک غریب چائے کی پیالی پلائے اور امیر جانتا ہو کہ اس کو مجھ سے کوئی غرض نہیں، مجھ سے کوئی کام نہیں، تو اس کی ایک چائے کی پیالی ہی اس کے دل پر ایک بھاری احسان بن کر بیٹھ رہے گی. اور اس طرح احسان کا مضمون عام دنیا کے حسابات سے مختلف ہو جاتا ہے. بس اگر کسی کو مانوس کرنا ہو تو قرآن کریم نے جو احسان کا طریق بیان فرمایا ہے اس کے مطابق مانوس کریں. فرمایا ولا تمنن تستکثر، ایسا احسان نہ کیا کرو جس کے نتیجے میں زیادہ حاصل کرنا مقصود ہو اور جس کا مقصد کچھ اور لینا اور اپنی دولت کو یا اپنی طاقت کو بڑھانا ہو. اب یہ جو پیغام ہے اس میں بہت بڑی حکمت دعوت اللہ کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ غیروں سے حسن سلوک اس رنگ میں کریں کہ ان کو حسن سلوک کرنے والے کا کوئی فائدہ اس میں دکھائی نہ دے. اگر آپ بعض لوگ ہسپتالوں میں جاتے ہیں، مریضوں کی تیمارداری کرتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، وہاں ضرورت مندوں کا خیال کرتے ہیں، پھر بعض دفعہ وہ ان غریبوں کے لیے جن کا کوئی سہارا نہ ہو بعد میں کوشش بھی کرتے ہیں. میں نے اس کی ایک مثال دی تھی، پاکستان کے جیلوں میں سے ایک جیل میں جانے والے داعی اللہ نے مجھے ایک شخص کے حالات لکھے جو بہت ہی دردناک تھے، اور کوئی 25-30 سال سے وہ شخص بغیر کسی مقدمے کے صوبتوں میں مبتلا تھا اور کوئی اس کا پاسبان نہیں تھا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا. اس کا معاملہ ہم نے ایمنسٹی کو دیا اور ایمنسٹی نے اس کے لیے کوشش کی اور کامیابی نصیب ہوئی اور خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ آزاد ہوا. لیکن آزاد ہوتے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا. پہلے وہ ہندو تھا، پھر موحد بنا، موحد بھی ایسا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کے پیغام کا، آپ کے کلام کا، آپ کی ذات کا عاشق ہو گیا. اور اس نے آزادی کے بعد مجھے خط، بہت ہی دلچسپ ایک خط لکھا کہ اب مجھے پتہ لگا ہے کہ اسلام کیا تھا، یعنی اس دور میں، جبکہ احمدیت کے ذریعے مجھے اسلام کی حقیقی تعلیم سے تعارف ہوا ہے. بس احسان وہ کریں جو چھوٹا بھی ہو تو خود غرضی کا نہ ہو، اس میں کوئی خود غرضی کا پہلو نہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ احسان کرتے ہی تبلیغ نہ شروع کر دیں. اگرچہ تبلیغ بھی احسان ہے، لیکن جب آپ احسان کرتے ہی تبلیغ شروع کرتے ہیں تو اگلا سمجھتا ہے کہ اب سمجھ آ گئی ہے، اس لیے مجھے بلا رہا ہے. चाय की प्याली भी बुलाया और साथ तकरीर शुरू कर दी। और ऐसे लोग फिर बेचारे जिनको चाय की प्याली पिलाई जा रही होती है वो जहर मार करते हैं चाय, लुत्फ नहीं उठाते। वो कहते हैं मुसीबत से निजात मिले, मैं किस मुसीबत में फंस गया, एक प्याली चाय के बदले इतनी लंबी तकरीर झाड़ दी इस शख्स ने। और फिर वो दामन बचाते हैं और आइंदा ऐसे शख्स से मिलने से भी गुरेज करते हैं। तो एहसान से मुराद है ऐसा एहसान जिसके बाद इर्द गिर्द कोई गरज दिखाई न दे रही हो, और वो गरज जो आप रखते हैं ये उस वक्त जाहिर हो जबकि गरज एहसान का रंग इख्तियार कर चुकी हो। और जिस शख्स पर यह गरज जाहिर हो रही है एहसान के रंग में जाहिर हो रही हो, इसके बहुत से तरीक़ हैं। और मानूस करने का जो इल्म है इस ये तो अल्लाह ताला फितरतन अता करता है और तजर्बे से फिर ये इल्म बढ़ता है। बाज जो मुबल्लिग़ हैं बेचारे वो अपनी सादगी में इस तरह तबलीग करते हैं, एक खातून है उनको बड़ा शौक़ है तबलीग का, मुझे मिलने आई, मैंने उनसे पूछा बताएं किस तरह तबलीग की। उन्होंने कहा वो जो रिसाले शाया हुए थे इतराज़ात के जवाब के, एक औरत थी मैंने उसको 3 रिसाले उसको दे आई हूँ। मैंने कहा ये तो मकसद नहीं था इस तरह तकसीम करना। मैंने कहा क्या नतीजा निकला कि मैं दूसरी तरफ मिली तो और भी नाराज़ थी। इस तरह तो फिर नाराज़ होंगे, तबलीग के साथ जो हिकमत को बांधा गया है उस हिकमत के तकाजों को पूरा करना चाहिए। और मानूस करने में मज़मून से मानूस करना दाखिल है। एक देखें एक औरत है जिसकी घर की गाय या भैंस है, रोज़ाना दूध दोती है लेकिन जब तक पसमाए नहीं उस वक्त तक वो गाय या भैंस उसको दूध नहीं देती, पानी डालती है, नरम हाथों से उस थनों पर हाथ फेरती है और यहाँ तक के दूध आ जाता है। और जब वो दूध दोती है तो गाय या भैंस पर एहसान करती है क्योंकि वो दूध से भरा हुआ थन उसके लिए बोझ बन जाता है। तो गरज पूरी हो रही है लेकिन एहसान के रंग में, और उससे पहले प्यार और मोहब्बत से दिल लुभाना, जिसको हम पता नहीं पंजाबी थी या उर्दू मगर पसमाना कहा करते थे बचपन में कि गाय भैंसों को पसमाया जाता था। तो बग़ैर पसमाए आप मज़मून की तरफ ले आएंगे तो जिस तरह गाय फिर दुलती मारती है और बाज़ दफ़ा अगर थोड़ा सा दूध पहले धोया हुआ वो भी ज़ाया हो जाता है। तो ऐसा काम ना करें कि खुदा की खातिर आप किसी को पसमाए बग़ैर खुदा का जिक्र शुरू कर दें और बजाय इसके कि वो आपकी तरफ मायल हो वो दुलती मारे और आपकी सारी मेहनत ज़ाया चली जाए। पर इसको ये मेरी मुराद ये है कि सिर्फ ज़ाती ताल्लुक़ कायम करना ही नहीं बल्कि मज़मून के साथ ताल्लुक़ कायम करने में भी मराहिल होते हैं और उनको इख्तियार करना चाहिए दर्जा बदर्जा। बाज़ लोग बड़ी हिकमत से काम करते हैं, ऐसी किताबें देते हैं जिनमें बराह रास्त कोई तबलीग का मज़मून नहीं है, ये ऐसी किताबें देते हैं जिनमें किताब वसूल करने वाले को अपने मकसद के लिए एक बहुत उम्दा हथियार हाथ आ जाता है। मसलन ईसाई इलाकों में मुसलमान हैं जिनको ईसाइयों से मुकाबले की सलाहियत नहीं है या इस्तेतात नहीं है, उनको आप अहमदियत का वो लिटरेचर दें जिसमें ईसाइयों के मद्दे मुकाबल बड़े कवी दलाइल पेश किए गए हैं, तो ऐसा लिटरेचर वसूल करने वाला ये नहीं समझेगा कि मुझे खींचा जा रहा है बल्कि उसके लिए तकवियत का सामान होगा। अगर मुसलमानों को जिनको खुदा ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वदियत फरमाई है जैसे दूध में पिलाई गई हो, बद से बद भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ज़रूर रखता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की वो कुतुब दी जाएँ जिनमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ऐसे ऐसी शान से पेश किया गया है, ऐसे अजीम तरीक पर पेश किया गया है कि उसकी मिसाल दूसरी कुतुब में दिखाई नहीं देती। मसलन सीरत खातमुन नबीयीन है, मसलन लाइफ ऑफ मोहम्मद है हज़रत मुस्लिम मौऊद की किताब, या आप उनको अगर दें तो तो उनके अंदर ना सिर्फ ये कि आपके लिए पहले से बढ़कर ताल्लुक कायम होगा बल्कि अहमदियत से एक ताल्लुक कायम हो जाएगा, और उनको रफ्ता रफ्ता उस मुताले के दौरान ये समझ आएगी कि अहमदियत तो कुछ और चीज़ है, जो हम समझते थे वो नहीं है। फिर तलब पैदा होगी और वो तलब आपके लिए मौके पैदा कर देगी कि आप उनको किताबें भी दें और एहसान भी कर रहे हों। एक दफ़ा पाकिस्तान में एक दोस्त ने मुझे बताया कि मैं तबलीग इस तरह करता हूँ कि दानिश्वरों प्रोफेसरों वगैरह में मेरा आना जाना है, ऐसे हैं उनमें से जो खुदा की हस्ती के भी कायल नहीं हैं या शक रखते हैं, फरिश्तों वगैरह के मज़मून पर मजाक उड़ाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो उनके मद्दे मुकाबिल उनसे लड़ते झगड़ते हैं और वैसे करते हैं। तो मैं उनको ऐसी किताबें जैसे मलाइकतुल्लाह हज़रत मुस्लिम मौऊद की किताब है या तकदीर इलाही है, ये देता हूँ, और दोनों फरीक में इससे दिलचस्पी पैदा हो जाती है। जो दिफा कर रहे होते हैं मलाइकतुल्लाह का, वो मलाइकतुल्लाह जब मुस्लिम मौऊद की किताब मलाइकतुल्लाह पढ़ते हैं तो उनको मलाइकतुल्लाह की हकीकत मालूम होती है, वो इस लायक हो जाते हैं कि वाकईतन ठोस दलाइल से मलाइका की हकीकत की का दिफा करें और मलाइका के वजूद का दिफा करें, और दूसरों के दिल में जो शकूक होते हैं वो इसलिए जायल हो जाते हैं कि उनके यहाँ मलाइका का तसव्वुर ही ऊट पटांग अजीब व गरीब सा है, और मलाइका का सच्चा तसव्वुर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से हदायत पाकर हमें अता किया, लेकिन नया तसव्वुर नहीं अता किया। 100% कुरान करीम पर मबनी, 100% अहादीस और अक़वाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी, लेकिन उस नूर तक गैरों की नज़र नहीं गई और फर्जी कहानियों को अपना बैठे और कुरान और हदीस की हकीकतों को नज़रअंदाज कर दिया। बाज़ दफ़ा इंसान फर्जी कहानियों में बसता हुआ हकीकत को देखते हुए भी पहचान नहीं सकता, ये भी एक किस्म का अंधापन है। उनसे बहुत से गलत अकायद जो अहमदी होने से पहले नए अहमदी होने वालों के हुआ करते थे, जब अहमदी होने के बाद मुड़कर उनको देखते हैं तो हैरान होते हैं कि हमें पहले क्यों नहीं ख्याल आया, कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें थी जिन पर हम ईमान रखा करते थे, और कभी समझ नहीं आती उनको कि हुआ क्या था, मगर गफलत की आंख अंधी आंख हुआ करती है, उसे देखते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा होता। बस जब इस किस्म की किताबें आप अपने दोस्तों को उनके मुनासिब हाल देंगे तो उसके नतीजे में उनकी गलतफहमियां दूर होंगी, उनको अहमदियत में इस लिहाज से दिलचस्पी पैदा होगी कि वो उनका दिल गवाही देगा कि ये नूर है, ये रोशनी अता करने वाली चीज़ है। इसी तरह और बहुत सी, अब इंट्रोडक्शन टू द होली कुरान है मसलन, इसकी कुरान करीम के तारुफ में जो हज़रत मुस्लिम मौऊद ने बहुत ही उम्दा एक मकाला लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू द होली कुरान, वो बाज़ लोग पहले ईसाइयों को देते हैं। अब ये मेरे नज़दीक बाज़ सूरतों में तो दुरुस्त है मगर बहुत सी सूरतों में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो ईसाइयों के ख़िलाफ़ इस कदर शदीद हमला है कि जो आपसे ताल्लुक़ मज़बूत, आपसे जिसको मज़बूत ताल्लुक़ कायम ना हुआ हो या इस्लाम में गहरी दिलचस्पी पैदा ना हुई हो, बाज़ दफ़ा वो उस हमले की ताब ना लाकर आपसे भी भागता है और इस्लाम से भी भागता है, और बाज़ दफ़ा मोहब्बत की बजाय उसके दिल में एक नफ़रत पैदा होती है जो कमज़ोरी के एहसास से पैदा होती है। वो महसूस करता है कि मैं इस दुश्मन से लड़ नहीं सकता, इसलिए उसके नतीजे में उसकी कमज़ोरी नफ़रत में तब्दील हो जाती है। एक दफ़ा हज़रत मुस्लिम मौऊद के पास एक अमेरिकन सफ़ीर ने यह शिकायत की कि मैं आपकी किताब, मुझे दिलचस्पी थोड़ी सी पैदा हुई थी, मुझे किसी ने इंट्रोडक्शन टू द होली कुरान दी, आपने तो बहुत सख्त हमले किए हैं, बिल्कुल नावाजिब हमले हैं। हज़रत मुस्लिम मौऊद ने फरमाया कि तुमने वो हमले नहीं देखे जो गैर सैकड़ों साल से इस्लाम पर कर रहे हैं, अब अगर हम उनका दिफा करें तो तुम लोग कहते हो कि ये सख्त हैं, जब तुम सख्ती करते हो तुम्हें उस वक्त एहसास नहीं होता। बहरहाल एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर ने भी मुझसे बात की कि फलां आपकी किताब में बहुत सख्ती की गई है, वो यही किताब थी। अब यही किताब अगर आप मुसलमानों को दें तो बिल्कुल बरक्स नतीजा निकलेगा। पहले मुसलमानों को दें और मुसलमान जब ये पढ़ेंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी कि अहमदियत इस तरह इस्लाम का दिफा करती है, तो उनके लिए ये तबलीग का जरिया बन जाती है। और यही किताब एक ईसाई के लिए उस वक्त तबलीग का जरिया बनती है जब चंद मनाजिल आप तय कर चुके हों, किसी हद तक उसको मजमून से शनासा कर चुके हों। और जैसा कि मैं लफ्ज़ पसमाने का इस्तेमाल करता रहा हूँ, उसके लिए पसमाने की मंजिल ज़रा देर में आएगी। बाज गायें बड़ी कड़वे मिजाज की होती हैं, उनके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, हाथ वाथ फेरने, थपकाना, प्यार करना, पानी की छींटे देने, वरना वो दुरतियाँ भी मारती हैं और सींग भी मारती हैं। तो मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं, उनको समझना चाहिए। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हर जगह दावत अल्लाह के मज़मून में हिकमत को पहले रखा है, हर दूसरी चीज़ को बाद में रखा है। बस हिकमत के तकाजे ये हैं कि पहले उसके दिल को अपने लिए नरम करो, फिर अपने लिए दिल नरम करने के बाद ऐसे ज़राए इख्तियार करो कि इस्लाम के लिए उसका दिल नरम होना शुरू हो, और जूं जूं दिल नरम हो उससे इस्तेफादा करो और मुनासिब हाल तबलीग करो, मुनासिब हाल कुतुब उसको मुहैया करो। और ये वो सिलसिला है जो रफ्ता रफ्ता फिर खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले तलब करनी पैदा करनी ज़रूरी है। इस बात नुक्ते को अब अच्छी तरह समझ जाएं, अगर तलब पैदा किए बगैर आपने एहसान का बदला हासिल करने की कोशिश की तो ये एहसान आप पर उलट जाएगा और बेकार जाएगा। बस ताल्लुकात के दायरे वसी करके, जैसा कि मैंने बयान किया है, रफ्ता रफ्ता मजमून खोल कर आगे बढ़ें। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का मंजूम कलाम एक बहुत गहरा असर रखने वाला कलाम है और इससे भी भरपूर इस्तेफादा करना चाहिए। बाज़ दफ़ा कैसेट्स सुनाकर अच्छी आवाज़ में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हज़रत मसीह मौऊद का नातिया कलाम सुनाया जाए तो उससे दिल पर गहरा असर पड़ता है। फिर बाज़ दफ़ा इब्तिदा में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वो इक्तबासात पेश किए जाएँ जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हैं, उनका दिल पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो हर शख्स के हालात देखकर उसके मुताबिक उसके साथ रफ्ता रफ्ता सलूक होना चाहिए। बहुत से अहमदी ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बताया कि हमने तबलीग से पहले आपके खुतबात सुनाने शुरू किए और वो खुतबात सुनाए जिनमें कोई बराह रास्त तबलीग नहीं है, तरबियत के मज़मून से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इस इबादत के मज़मून से, गल्फ के मज़मून से वगैरह वगैरह, और उनको सुनने के बाद ख़ुद एक तलब पैदा हुई, सुनने वाले के दिल में एक तलब पैदा हुई और उन्होंने हमसे मुतालबे शुरू किए और हमने उनको लिटरेचर देना शुरू किया। एक पठान दोस्त जो आज़ाद इलाके के रहने वाले हैं, वो इस वक्त मेरे सामने खुतबे में बैठे हुए इस जुमे में मेरे सामने मौजूद हैं, उन्होंने मुझे खुद बताया कि मेरे दिल में तो अहमदीद की मोहब्बत की वजह खुतबात थे। मुझे एक अहमदी दोस्त यहाँ मस्जिद लाकर दिखाने के लिए कि देखो किस दिन सही कि हम कैसे नमाज पढ़ते हैं, खुतबा कैसे होता है, एक दफ़ा वह मुझे पहुँचा गया। उसके बाद फिर ऐसा शौक़ हुआ कि हर खुतबा मैं यहीं आकर अदा को सुनता हूँ, हर जुमा यहीं अदा करता हूँ, और उनको सुनने के बाद किसी दलील की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे दिल में ये बात मेघ की तरह गड़ गई है कि आप सच्चे हैं, इसलिए अब मुझे और किसी दलील की ज़रूरत ही नहीं है, जो आप कहेंगे मैं ठीक समझूंगा और ठीक कहूँगा। और चुनाचे वो अल्लाह के फजल से बड़ी वफा के साथ अहमदियत के साथ ताल्लुक में ना सिर्फ कायम रहे बल्कि बढ़ते चले जा रहे हैं और अपने माहौल में भी इर्द गिर्द अहमदियत की तबलीग करते हैं। तो तरीक़ेकार का सही होना बहुत ही अहम है और तलब पैदा करने से पहले दावत देना जुल्म के मुतरादिफ है। ऐसी जमीन में बीज फेंकने के मुतरादिफ है जो पथरीली हो, जिसे नरम ना किया गया हो, जिस पर मेहनत ना की गई हो, जिसमें नमी मौजूद ना हो। यही वजह है कि हमारे बहुत से दावत अल्लाह करने वाले यही हमेशा रोते रहते हैं, यही उनका शिकवा रहता है। हम तो तबलीग करते हैं, कुछ सुनते ही नहीं। कुछ सुनाने वाली बात करोगे तो सुनेंगे ना। तबलीग का मजमून तो तबलीग का जिक्र किए बगैर गालिब ने बड़े उमदा रंग में बयान किया है। कहता है, मैं बुलाता तो हूँ उनको मगर ऐ जज्बा दिल उन पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिनाए ना बने। मैं तो बुलाता हूँ मगर आएंगे जज्बा दिल से ही। बस ऐ जज्बा दिल ऐसा कोई करिश्मा दिखा कि उन पर ऐसी बन जाए कि उनसे बिनाए बने ही ना, मजबूर हो जाए तेरी तरफ आने पर। तो अमरे वाकया ये बड़ी गहरी बात कर गया है। बातों से बुलाया जाता है मगर खींचता जज्बा दिल ही है। अगर जज्बा दिल नहीं होगा तो बातें बिल्कुल बेअसर रहेंगी, कच्चे धागे की तरह रहेंगी, उनमें खींचने की कोई ताकत पैदा नहीं होगी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वो कुतब जिनका खसूसियत के साथ मशरक़ी यूरोप और रूस की सोसाइटी पर एकदम गहरा असर पड़ता है, उन कुतुब में सबसे नुमाया मैंने मसीह हिंदुस्तान में पाई है। ये एक ऐसी किताब है जिसे साबिका ईसाई दुनिया, जो दहरिया हो गई और इश्तराकी दुनिया कहलाती है, उसके बाशिंदों पर बहुत गहरा असर पड़ता है, एकदम गहरी दिलचस्पी पैदा होती है। और खुदा को अभी वो नहीं मान रहे होते, लेकिन इस किताब में वो हकीकत पाते हैं और इसके नतीजे में फिर वो मुतालबा शुरू कर देते हैं। अभी भी जब हमने एक नुमाइंदा भेजा रूस और एक वफद बल्गारिया भिजवाया, तो उनकी दोनों की यही रिपोर्ट थी कि ये किताब फौरन शाया होनी चाहिए। और रूस की तरफ से शिद्दत से मुतालबा है, चुनाचे हमने शाया कर तबाह करवाई है और भी बहुत सी किताबें तबाह करवाई हैं। अगली बात मैं ये समझाना चाहता हूँ कि दावत अल्लाह करने वाले को, जैसा कि मैंने बयान किया था, अपने मंसूबे में इस बात को शामिल करना चाहिए कि किन लोगों में वो ज़्यादा उमदगी के साथ तबलीग कर सकता है। बाद लोग रशियन स्पेशलिस्ट हो सकते हैं और उनको दिन रात फिर उन्हीं में ही काम करना चाहिए। दूसरों तक भी बात पहुंचाना फ़र्ज़ है, लेकिन जहाँ से ज़्यादा सहूलत से आपको शिकार हासिल होता हो, शिकारी वहीं जाया करता है पहले। और बाज़ दफ़ा एक ज़्यादा बड़े शिकार के लिए छोटे शिकार को छोड़ा भी जाता है। चुनाचे अच्छे शिकारी वो हैं जो ये जायज़े लेते हैं कि कहाँ कहाँ शिकार मौजूद हैं और उनकी मर्ज़ी का शिकार, ऐसा शिकार जिसको शिकार करने के फ़न में वो माहिर हों, वो कहाँ मिलता है। चुनाचे वो तेज़ी के साथ उन्हीं जगहों पर जाते हैं और रस्ते के शिकार को छोड़ते चले जाते हैं ताकि वो वक्त ज़ाया ना हो और असल मकसद को नुकसान ना पहुँचे। बस शिकार है तो बज़ाहिर मारने वाला लफ्ज़, लेकिन जैसा कि मैंने वजाहत पहले कर दी है, तमसीलात की बातें ज़रूरी नहीं कि हर 100% ही इतलाक पाएँ। ये मज़मून समझाने की खातिर बयान किए जाते हैं। और जहाँ तक तबलीगी शिकार का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक उसी शिकार से है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिखाया गया है, मारने के लिए नहीं बल्कि अपना बनाने के लिए। चुनाचे इस ज़माने में, अब ख़ास तौर पर मग़रबी दुनिया में, ऐसे शिकारी कसरत से आपको मिलेंगे जो परिंदों की हिफाजत के लिए उनको फंसाते हैं, एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए, फना से बचाने की खातिर वो उनको जालों में काबू करते हैं। फिर उनके ऊपर वो बाज़ दफ़ा उसके ज़रिए उनको टीके लगाते हैं ख़ास किस्म के, बाज़ दफ़ा ऐसे निशान लगा देते हैं कि कोई दूसरा शख्स ग़लती से उनको मार ना बैठे। कई ज़राए इख्तियार किए जा रहे हैं, लेकिन पहले काबू करते हैं। और ऐसी मुहिमात भी आपको देखने में आएंगी जहाँ हाथियों को भी बेहोश करके पहले काबू किया जाता है, फिर उनकी बका के सामान की खातिर उनको मुनासिब जगहों में पहुंचाया जाता है जहां उनकी ज़िंदगी के ख़तरे कम हों और यानी खुराक वगैरह के वाफर और काफ़ी मुहैया हो। तो ये वो तरीक़ हैं जिनसे शिकार बज़ाहिर शिकार है लेकिन उस नीयतों के फ़र्क के नतीजे में बहुत ज़्यादा फ़र्क पैदा हो जाता है। बस आपकी नीयत ज़िंदा करने की है, आपकी नीयत बचाने की है। आप इस ज़माने के लिए खुदा ताला की तरफ से मसीहा नफ्स बनाए गए हैं। अगर आपने ज़माने को ना बचाया तो इसके बचने के आसार नहीं हैं। जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इल्हामन बताया गया, ये लोग ज़िंदगी के फैशन से दूर जा पड़े हैं। लेकिन कितना प्यारा इजहार है, ज़िंदगी के फैशन से इनको ज़िंदगी की अदाएँ नहीं रही और बज़ाहिर फैशन में मुबतला हैं लेकिन ये मौत के फैशन हैं जो कौमों को हलाक कर दिया करते हैं। ज़िंदगी की फैशन नहीं है, ज़िंदा रहने के गुर इनको नहीं याद रहे, इसलिए आपने इनको ज़िंदगी के फैशन सिखाने हैं। और वाकईतन दावत अल्लाह ज़िंदा करने की खातिर करनी है, वरना अगर आपने इनको ज़िंदा ना किया तो ये नहीं बचाए जाएंगे। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी लिहाज से खुदा ताला ने जिंदा फरमाया कि इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम, ये तुम्हें बुलाता है ज़िंदा करने की खातिर, मारने की खातिर नहीं। बस हर दावत अल्लाह करने वाले को ये मकसद हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए कि मैंने ज़िंदा करना है। और ये आला मकसद अगर उसके पेश नज़र रहे तो उसके अमल पर इसका बहुत ही सवाले असर पड़ेगा और इसके नतीजे में उसको खुदा ताला खुद ब खुद ऐसे आदाब और ऐसे असलूब सिखाएगा जिनसे दावत अल्लाह करने वाले में ज़िंदगी के आसार दिन ब दिन नुमाया होने शुरू हो जाएंगे। तबलीग को ऐसा शख्स महज दलाइल पर में महदूद नहीं करेगा, उसका मकसद ज़िंदा करना है। वो उसकी नेकियों की तलाश करके उनको उभारने की कोशिश कर रहा होगा, वो कोशिश करेगा कि इसके अंदर अगर कोई दबी हुई चिंगारी, कोई ज़िंदगी की रमक मौजूद है तो उसे हवा दूँ, उसे फूकूँ, उसको आहिस्ता आहिस्ता ताकत बख्शूँ। और इसके अंदर जो इर्द गिर्द बेकार लकड़ियों का अंबार लगा पड़ा है उसे उस चिंगारी के ज़रिए एक ज़िंदा नूर की शक्ल में तब्दील कर दूँ। बस ये वो दूसरा नुक्ता, एक यानी दूसरा या तीसरा जितना भी है, एक नुक्ता है जिसे मैं ख़ास तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़िंदा करने वाले हैं आप, और ज़िंदगी पैदा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि पहले कोई पैगाम को तस्लीम कर ले। हर शख्स के अंदर मख्फी खूबियाँ होती हैं। आजकल तो दिया सलाइयों और लाइटरों के ज़माने हैं, पुराने ज़मानों में हिंदुस्तान में मुझे याद है औरतें आग रात में दबा दिया करती थीं और सुबह सुबह खुश्क लकड़ियाँ लेकर चिंगारी तलाश किया करती थीं बीच में से, और उस चिंगारी पर कागज़ रख कर या बारीक खुश्क लकड़ियाँ रख कर फूके मार कर उस आग को ज़िंदा करने की कोशिश करती थी। याद रखें, हर इंसान में अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की सलाहियतें पैदा रखी हुई हैं। वो दब जाती हैं, राख के ढेर चले बाज़ दफ़ा नज़रों से गायब हो जाती हैं, मगर होती ज़रूर हैं। बद से बद आदमी में भी बाज़ ऐसी खूबियाँ हैं जिनसे ताल्लुक़ पैदा करके आप उसको ज़िंदा करना शुरू कर सकते हैं, उस शख्स की ज़िंदगी के सामान फराहम कर सकते हैं। बस ऐसा ताल्लुक़ जब आप किसी शख्स से पैदा करेंगे तो उसको आपसे इसी किस्म का एक ताल्लुक़ पैदा होगा, और ये वो ताल्लुक़ है जो ज़ुबान से किसी पैगाम की तरफ बुलाने के नतीजे में पैदा नहीं हुआ करता। ये एक गहरा ज़िंदगी का ताल्लुक़ है जिसमें एक इंसान महसूस कर लेता है और उसका दिल गवाही देता है कि ये शख्स सच्चा है, इसे मेरी बका में दिलचस्पी है और मेरी भलाई में दिलचस्पी है, इसे अपना कोई मकसद नहीं है मेरे से बल्कि मेरे सारे मकासद इससे वाबस्ता हैं। बस जब आप फ़र्ज़ करें किसी मरीज के पास अस्पताल में जाते हैं तो इस तरह हमदर्दी करें कि उसका ज़ाहरी आज़ार दूर हो, उसको मशवरे दें, उसके साथ उसका ख्याल रखें। अगर कोई तजर्बा हो ऐसे मरीज का तो बताएं कि फ़लाँ जगह ऐसा मरीज शफा पा गया और उसके उस तक पहुंचने में जो मदद दे सकते हैं उसको दें, उसको दें। अब मैं अपनी बेगम की बीमारी के सिलसिले में अस्पताल जाता हूं तो इर्द गिर्द के मरीजों से जिनसे भी रबता हो उनको मैं मशवरे देता हूं कि आप ये करें वो करें। मैं तो ख़ुद आपका इलाज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन आप फलां फलां डॉक्टर से रबता करें, फलां किस्म के इलाज ईजाद हो चुके हैं अमेरिका में या इंग्लिस्तान में और अल्लाह ताला के फजल से उसके नतीजे में मरीजों में बड़ी गहरी दिलचस्पी पैदा होती है, उनके रिश्तेदारों में बड़ी दिलचस्पी पैदा होती है। बाद लोग बाद में पूछते हैं कि ये कौन शख्स था जो ये बातें हमसे करके गया है। तो आपको इंसान की ज़ात में दिलचस्पी लेनी है और इस ज़िमन में जो मैं अब बात कर रहा हूँ उसकी खूबियों को तलाश करना चाहिए, उसकी खूबियों से अपना ताल्लुक जोड़ना चाहिए और उसकी खूबियों की अफजाइश का इंतज़ाम करना चाहिए और उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इस ज़मन में कैदियों के साथ रबते में जमात अहमदिया के लिए बड़े मौके हैं। कई ऐसे कैदी हैं जिनके साथ अहमदियों ने रबते किए और अल्लाह ताला के फजल से उनमें बहुत पाक तब्दीलियाँ पैदा हुई। अभी कुछ हद दिन पहले मुझसे भी इंग्लिस्तान ही के एक कैदी मिलने के लिए आए और उनको पैरोल पर कुछ देर के लिए वो बाहर आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि एक शख्स एक अहमदी ने मुझसे बात शुरू की, मैं उसके किरदार से जिस गहरी हमदर्दी से वो मेरी भलाई चाहता था और दूसरे कैदियों की भलाई चाहता था उससे इतना मुतासर हुआ हूँ कि बड़ी तेज़ी के साथ मैं अहमदियत में दिलचस्पी लेने लगा। उसने बताया कि जब दूसरे मुसलमानों को इल्म हुआ और बाद मौलवी भी वहाँ आते हैं तो उन्होंने मुझे पूरे ज़ोर से रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये बहुत ही गंदे और खबीस लोग हैं, इससे बेहतर है कि तुम ईसाई रहो लेकिन इनके जाल में न फंसना। कहता मैंने उनको बताया कि तुम्हें पता क्या है, मैं तो इनको जानता हूँ, अगर कोई शराफत नजाबत इंसानी कदरें हैं तो इन लोगों में हैं, अगर मज़हब ये कदरें पैदा करने के लिए नहीं आता तो मुझे ऐसे मज़हब में दिलचस्पी कोई नहीं है। तो तुम अपनी दलीलें अपने पास रखो, मैं तो जिनका होना था हो चुका हूँ। चुनाचे वो बड़े खुलूस के साथ और मोहब्बत के साथ मुझे मिलने के लिए आए और कहा कि मैं वापस जाऊँगा कल जेल और बकिया अरसा जितना मेरा वहाँ बसर होगा मैंने अहमदियत की तबलीग के लिए वक्फ रखना है। तो कैदी हों या और कई किस्म के मरीज़ और बीमार और गंदी आदतों में मुबतला और ड्रग्स में फंसे हुए और कई किस्म की मुश्किलात में गिरफ्तार लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अगर आप दिलचस्पी लेंगे और दिलचस्पी लेते ही पैगाम नहीं देंगे बल्कि दिलचस्पी लेते हुए उनकी ऐसी भलाई के इंतज़ाम करेंगे जिसमें उनको दिलचस्पी हो, फिर वो मंजिल आएगी कि वो आप में और आपके पैगाम में दिलचस्पी लेने लगेंगे, उनके अंदर वो तलब पैदा होगी जिसके नतीजे में अल्लाह ताला के फजल के साथ आपको खुदा ताला वो परिंदे अता करेगा जिन्हें ब्राहिमी तयूर कह सकते हैं जो आपके हो जाएंगे। फिर जिस बहाव में भी जाएंगे आपकी एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए वो आपके कदमों में या आपकी झोली में आ जाया करेंगे, आपके हाथों में बैठ जाया करेंगे, आपके हो जाएंगे और खुदा के हो जाएंगे। ये वो नियत है जिसको लेकर आपने दावत अल्लाह का काम करना है। इस ज़मन में मैं आपको एक दिलचस्प हदीस सुनाता हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। ये हदीस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई और इसकी कोई सनद नहीं मिलती थी। आखिर मियाँ अनस अहमद साहब को इल्मी शौक़ है, उन्होंने तलाश करके वो एक किताब का मुझे इस वक्त नाम याद नहीं लेकिन सही किताब है और मौकर किताब है, उस सनद को उस तलाश करके मुझे भिजवाया। जब मैंने गौर किया इस हदीस पर तो पहले तो मुझे ताज्जुब हुआ कि अमल जो नेक नियति के साथ किया जाए वो बहरहाल बेहतर होता है, खाली नियत अमल से बेहतर कैसे हो गई। फिर मुझे अल्लाह ताला ने ये मज़मून सुझाया, इसमें गहरी हिकमत ये है कि मोमिन की नियतें जो दिल की गहराई से निकलती हैं बहुत ज़्यादा नेक अमल की खाहां होती हैं, और किसी इंसान में यह ताकत ही नहीं कि अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक अपनी हर ख्वाहिश को अमल में डाल सके। इसी तरह बद लोग बदी की नियतें बहुत रखते हैं, लेकिन किस बद को तौफीक मिलती है कि वो हर बदी कर सके। इसीलिए तो गालिब ने कहा कि यारब ना करदा गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद, यारब अगर इन करदा गुनाहों की सजा है तो मोमिन को नाकर्दा नेकियों की हसरत की दाग चाहिए। और कई नेकियां उसके दिल में होती हैं, नियत में मौजूद होती हैं, लेकिन उन्हें वो कर नहीं सकता। और इस मज़मून को जब आप अहमदी ज़िंदगी पर इतला करके देखें तो आपको कसरत से ऐसी अहमदी दिखाई देंगे जिनके दिल में ख्वाहिश होती है मैं भी रूस में तबलीग के लिए जाऊँ, मैं फलां चंदे में हिस्सा लूँ। वो चंद कदम बढ़ सकते हैं, पूरा काम नहीं कर सकते। बस इस पहलू से मोमिन की नियतें उसके अमल से बढ़ जाती हैं। और खुशखबरी इस हदीस में यह है कि मोमिन को अल्लाह ताला उसकी इस नियत का भी सवाब देता है जो वो कर नहीं सका, जिसे वो अमल में नहीं ढाल सका। तो अपनी नियतों को खूबसूरत और हसीन बना दें और अल्लाह वक्फ कर दें, फिर देखें कि आपकी दावत अल्लाह में कितनी बरकत पड़ती है। खुदा करे कि हमारी नियतें ज़्यादा से ज़्यादा अमल के सांचों में ढल सकें, और जो नहीं ढल सकें उनको भी खुदा ताला कबूल फरमा ले और उनका सवाब मुतरत्तब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ला लहु व मन युदलिलहु फला हादिया लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ